नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुरनूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुरनूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्ता में है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।